अयो आग लग गई, क्या हो जाएगा? सभी आग लगा दिया, आप कुछ नहीं कर सकती। नमोकार मंत्र आपके पास है और विशुद्धि आपके पास है, तो आग भी कुछ नहीं कर सकती, अग्नि जल का रूप धारण कर लेगी। और ये देवता आते हैं तो पुण्य के उदय वालों को आते हैं क्या, पाप के उदय के वालों को भी आते हैं? तो सीता के पास पाप का उदय था क्या पुण्य का उदय था? संकट आया है तो पाप का उदय तो होना चाहिए, पुण्य कैसे? संकट कब आता है? पाप के उदय में संकट आता है, लेकिन उस संकट काल में यदि आप अपने भावों को शुभ रखते हैं, विशुद्ध रखते हैं, तो वह पाप का उदय भी पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये गणित मालूम हो गया क्या, किस समय में क्या होता है? पाप का उदय भी पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और केवल पुण्य का जोर जब मारता है तब सारे काम अपने आप होते हैं। संकट करने के लिए, संकट देने के लिए जो आया है वो दे नहीं पाएगा, और इधर पुण्य का उदय हो गया, पाप को हमने दबाया, शुभ परिणामों की साधना की, तो ऑटोमेटिक सभी काम होंगे बाहर जो होना चाहिए। लेट आए क्योंकि लेट कर आए, लेट कर आए इसलिए लेट आए, निश्चित बात है। शुभ कामों में हम लेटते, तो यह छठा नाम जो है नमोकार मंत्र का, अपराजित मंत्र, यह मंत्र जिसके पास है, जिसको मालूम है, इसमें रहने वाले पंच परमेष्टियों का ज्ञान परिचय जिसको है, वह अपने विशुद्ध भावों से इसका सहारा लेता है, तो वह स्वयं भी अपराजित बनता है। और नमोकार मंत्र तो अनादिकाल से अपराजित है ही, नमोकार मंत्र हमें अपराजित कर देता क्योंकि वह स्वयं अपराजित है, किसी के द्वारा हार नहीं सकता। कोई भी मंत्र, ऐसा वैसा मंत्र, कोई भी दुनिया का कैसी भी शक्तिशाली मंत्र हो, नमोकार मंत्र जितनी शक्ति किसी भी मंत्र में नहीं है, इसलिए इसको अपराजित मंत्र कहा है। मृत्युंजय, मृत्युंजयी मंत्र इसका दूसरा नाम है। इसकी आराधना से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। किसको जीता जा सकता है? मृत्यु को। और इस मंत्र में रहने वाले कौन हैं जो मृत्यु को जीतने जा रहे हैं या जीत चुके हैं? ऐसे दो हैं, जीतने जा रहे हैं और जीत चुके हैं, ऐसे दो हैं। मुनि महाराज, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, ये सभी जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। मृत्यु को जीतने का मतलब क्या? क्या अपने अंडर में रखना उसको? हमारा पुनः जन्म मरण न हो, ऐसा मरण एक बार करना, एक ही बार। हमारा जन्म मरण दोबारा न हो, ऐसा मरण एक ही बार करना, ऐसा मरण करने को ही मृत्यु का मरण कहलाता है, मृत्यु को जीतना कहलाता है। तो हम मृत्यु को जीत सकते हैं इस मंत्र पर, क्योंकि इसमें रहने वाले पांच परमिष्टि मृत्यु को जीतने वाले परमिष्टि हैं, जो इस पंच परमिष्टि के पद पर रहकर मरण करते हैं वे मृत्यु को जीत ही जाते हैं। मुनि महाराज पंडित मरण अगर कर देते हैं एक बार, देखो मरण के पांच भेद हैं, पुनः ताजा कर देता हूं शिविर का विषय, बहुत समय हो गया, 7 साल पीछे सुने होंगे। मरण के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। कौन कौन से? बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, पांच प्रकार के मरण हैं ये। संसारी प्राणी सदा ही जन्म मरण कर रहा है, किंतु इन पांच मरणों में से बहुत बार बहुत बार बहुत बार किया है, अनंतों बार किया है, तो कौन सा मरण किया है? बाल बाल मरण किया है। देखो बाल 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 मरण बार बार किया है, इसलिए बाल बाल नहीं बच पाया है। ये बाल बाल नहीं बच पाया, गिर गया, पतित हो गया, कभी निगोद में, कभी द्विइंद्रिय में, विकलत्रय में, पंचेंद्रिय में, चतुर्गति में, 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मरण किया है, लेकिन उस मरण का नाम बाल बाल मरण ही रहा है। हमने अधिक से अधिक बार वही किया है। संसार में जितने प्राणी मरते हैं, अनादिकाल से मर चुके हैं, वो एक मरण से ही मरे हैं। कौन सा? बाल बाल मरण। बाल बाल मरण का अर्थ होता है अति अज्ञान, अति अज्ञानी, कुछ समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, आत्मा क्या है, मरण क्या है, जन्म क्या है, मोक्ष क्या है, मोह क्या है, संसार क्या है, त्याग क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं जानता। ऐसी दशा में संसारी प्राणी को जो मरण होता है उस मरण का नाम बाल बाल मरण। निगोद में कितने जीव हैं? अनंतानंत, अक्षय भंडार तो जीवों का वही है। निगोद के एक शरीर में अनंत जीव भरे हैं, शरीर एक और अनंत जीव, ऐसे शरीर भी अनंत हैं, और प्रत्येक शरीर में अनंत 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 जीव हैं, जो जन्म लेने के लिए आते हैं, आते समय एक साथ अनंत आते हैं, मरण के काल में एक साथ अनंत मरते हैं, छूटते समय शरीर को छोड़ते समय एक साथ अनंत ही छोड़ देते हैं, और एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो आप सोचो कितनी स्पीड से आयु कर्म का बंद और कितनी स्पीड से आयु कर्म को उतना अनुभव करके त्याग देना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। इतने कहते समय उसने तो 36 बार जन्म मरण किया होगा, जन्म भी किया और मरण भी किया, कितनी स्पीड है जन्म मरण करने का, और अपना कितना लेट है देखो है? इसमें भी हम लेटे हुए हैं, इसमें भी हम लेट कर आए, कितने वर्ष व्यतीत करके आए, 20 साल व्यतीत करके आए, कोई 40 साल व्यतीत करके आए, यहां तक आए हैं, लेकिन कितना लेट हो गया मरण के लिए। निगोदी जीव तो कई बार जन्म मरण कर लेता इतने समय में, अनगिनत असंख्यात बार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, एक श्वास में आता है। एक श्वास किसको कहते हैं? एक नाड़ी के फड़कन से दूसरी नाड़ी का एक बार का फड़कन, बीच का जो काल है वो है श्वास। श्वास से ये नहीं लेना, ये इससे भी ये छोटा है। इतने में 18 बार जन्म और 18 बार मरण, ये 36 हो गए। कितनी स्पीड है, इतनी स्पीड से हम जन्म मरण किए हैं क्या नहीं किए हैं, इस मरण को जीतना चाहते हैं कि ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। बनाए रखना हो तो रखो, बाल मरण को कंटिन्यू करो, है? हाँ, बाल बाल मरण आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो धर्म की आराधना करनी पड़ेगी, धर्म की उपासना करनी पड़ेगी। कौन सा धर्म? सम्यक्तो धर्म। जो सम्यक्तो धर्म को पालन करते करते सम्यक्तो सहित ही मरण करता है उसको दूसरे नंबर का मरण होता है, बाल मरण। दुनिया की तरफ मत देखो, वो तो बाल बाल मरण ही करता आया है, बाल बाल मरण ही करता जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जिनवानी की तरफ देखो, क्या बोल रही है जिनवानी, तुमने अनादिकाल से बाल बाल मरण किया है, एक बार बाल मरण करके देखो क्या होता है, अनंत संसार समाप्त हो जाता है। और हमारा संसार कितना रह जाता है, चुल्लू भर पानी, एक समुद्र में से इतना पानी उठा लो, ये कितना है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल, इतना ही रहेगा आपका संसार। कौन सा मरण करने से? बाल मरण करने से। और बाल बाल मरण करने से वो समुद्र में जितना पानी है उतना बार जन्म मरण कौन सा चाहिए? बाल मरण चाहिए। हा? चाहिए तो वही, लेकिन उसको तभी पा सकते हैं जब यहां जो एक रोटी खाना सीखेगा वो धीरे धीरे दस रोटी भी खा सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले थोड़ा खाना सीखो, बहुत भी खाना सीख जाओ। बच्चा एक साथ चलना नहीं सीखता, उसको सिखाया जाता है, माँ हाथ पकड़कर थोड़ी चलाने के लिए सिखा देती और वो धीरे धीरे सीख जाता है और फिर सेल्फ डिपेंड होकर के दौड़ने लगता है। ऐसी जिनवानी माँ हाथ पकड़ करके उठा रही है, तू बाल बाल मरण कर चुका है, एक बार बाल मरण कर ले, अंगुली पकड़ करके बोल रही है जिनवानी। और हम अंगुली छुड़ा करके भाग रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? ऐसा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण ही चाहते हैं तो जिनवानी के हाथ में अंगुली दे दो, तुम जिधर खींचोगी उधर हम आएंगे, पर हमारी अंगुली कभी मत छोड़ना, ये कह देना जिनवानी से। और जिनवानी माता को इतनी करुणा है कि ऐसा कहो मत कि हमारी अंगुली छोड़ना, हम तो छोड़ना नहीं चाहती, तू ही छुड़ा करके भाग जाता, ये जिनवानी बोलती। एक बार हमें ये करना ही पड़ेगा, क्या? बाल मरण, बाल मरण करो, एक बार करो, आपका संसार कितना रह जाएगा, चुल्लू भर पानी। मराठी में काय बोलता थे सर, ओझल, 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 ओझल पानी रह जाएगा, ओझल, ओंजल, अच्छा ओंजल, ओंजल पानी, अच्छा ठीक। इस पानी में कितनी बूंदे हैं, संख्यात असंख्यात, बहुत छोटे छोटे बूंदों के भेद करोगे तो भी अनंत तो नहीं बनेंगे, सक्षय, उत्कृष्ट, असंख्यात या अनंत, अनंत का भी कहीं अंत है, लेकिन वह अनंत भी उपचार से ही अनंत है, वास्तविक अनंत नहीं है। असंख्यात भव जिसमें रह जाते हैं वो अनंत कैसे? एक ओंजल पानी में ही असंख्यात बूंद है तो अनंत बूंद कहाँ है? ये सम्यक दर्शन की महिमा है, ये धर्म का प्रभाव है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम सम्यक दर्शन धर्म को रक्षण कर लेते हैं तो धर्म भी हमारा रक्षण कर लेता है। किस रूप में? आपको अनंत काल तक दुख नहीं देगा, देने नहीं देगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के दुख को सहन करो, इसके बाद तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए सुख का मार्ग दिखाकर सुख में रख देंगे। ये धर्म सम्यक दर्शन रूप हमें सुख में रखता है, सुख में रखता है। उठाकर दुखात उद्धृत्य सुखे धरति, यह सधर्म जो दुख से उठाकर सुख में रख देता है संसारी प्राणी को, उसको कहते हैं धर्म। रख दिया उन्होंने, अनंत दुख से बचा दिया। और कितना बचा दिया दुख को? ओंजल पानी के बराबर। क्या ये सुख नहीं है? यही सुख है। हाँ, इसको भी फिर तीसरे मरण को समझकर उसको करने का प्रयत्न करेंगे तो ये ओंजल पानी भी अर्धा ओंजल रह जाएगा, इतना भी नहीं रहेगा। हम कहते हैं 8 चम्मच, कितना हो गया? इतना सा, 8 चम्मच पानी। 8 भव रहते हैं अधिक से अधिक। कौन सा मरण करने पर? बाल पंडित मरण करने पर। और बाल मरण करने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये ओंजल। और बाल पंडित मरण करने पर केवल 8 भव, अधिक से अधिक 8 भव। फिर इस 8 भव के बीच में स्त्री पर्याय में नहीं जा नहीं सकते, समाप्त हो गए आप सब। देवगति जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, देवगति जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, देवगति जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, मोक्ष जाएंगे। स्त्री पर्याय में जन्म लेना ही नहीं, कट हो जाएगा। सम्यक दर्शन धर्म हमें स्त्री पर्याय से मुक्त नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है कि स्त्री पर्याय में जन्म लेने नहीं देता जब तक वो आपके साथ में है। जब तक वह सम्यक तो साथ में है तब तक जीव स्त्री नहीं बनेगा। नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं लेगा, मूक नहीं बनेगा, कुंठ नहीं बनेगा, अंधा नहीं बनेगा, विकलांग नहीं बनेगा, नरक नहीं जाएगा, त्रिंच गति में नहीं जाएगा। ये सम्यक्तों का प्रभाव। सम्यक दर्शन आपको जब तक साथ में है इन सभी बुरे स्थानों से बचा देता है, बुरे स्थानों से रक्षा करता है, अच्छे स्थान पर ही पहुंचा देता है। अच्छा स्थान तो जो सांसारिक सुख दुख की अपेक्षा से अच्छा माना जाता है, तो स्वर्ग अच्छा है। वहां जाने के बाद आराम से रहना, न खाना बनाना, न बाजार जाना, न वो लाना, न ये लाना, न काम करना, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है? आराम से रहना है। खाने पीने के लिए खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। सभी खाने पीने का रसोई घर जो है वो यही है, गले में। रसोई घर भी गले में है। रसोई घर गले में, तो गला कितना बड़ा है फिर? कंठ ही रसोई घर है। रसोई घर में जैसे रसोई तैयार होती है ना, वैसे कंठ में रसोई तैयार हो जाती है, अमृत तैयार हो जाता है, और वह अमृत तैयार हो करके ठहरेगा थोड़ी यहाँ, आराम से पेट में खिसक जाएगा। तृप्त हो गए कितने महीने तक? अब महीनों भर आपको भूख नहीं लगेगी, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, ऐसा जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे ना स्वर्गों में, भूख लगने की अवधि अधिक अधिक है। हाँ, नीचे नीचे कम अवधि में भूख लगती है, ऊपर ऊपर ज्यादा अवधि में भूख लगती है। ये कहाँ? स्वर्गों में, वहां ऐसा है, हम बता रहे हैं। विश्वास तो है कि नहीं? हाँ विश्वास है तो बाल मरण होगा ये भी, यदि विश्वास है तो ही बाल मरण होना है, नहीं विश्वास ही नहीं है तो फिर तो बाल बाल मरण होना है, फिर बाल बाल बच नहीं सकेंगे। बाल पंडित मरण करने वाला भी आठ भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। ये किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। तो इस आठ भव के बीच में वह स्त्री पर्याय में जाने का सवाल नहीं उठता। यहाँ स्त्री पर्याय में भी यदि सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, स्त्रियां भी अगर सम्यक दर्शन धारण कर लेती हैं और सम्यक दर्शन के साथ साथ प्रतिमाधारी बन जाती हैं, तो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेती, उसके भविष्य के आठ भव ही बच जाते हैं, आठ से ज्यादा नहीं। प्रतिमा का पालन करने वाले चाहिए। महाराज वही बताओ, हम वही कर लेंगे। मन तो चाहता है कि वही कर लेंगे, लेकिन जब उसके स्वरूप को समझते हैं ना, महाराज इसको जरा छूट दे दो ना, तो मैं धर्म का स्वरूप ऐसा है और मैं छूट दे दूं तो धर्म हो जाएगा? धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा ही हमें पालन करना पड़ेगा। उसमें हम कभी एकाध बार नहीं कर पाए बात अलग है, जब हम नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त ये हमारी स्वयं की व्यक्तिगत कमजोरी होती है। पर वह व्यक्तिगत कमजोरी क्या धर्म है? वो धर्म नहीं कहलाता, वो मार्ग नहीं कहलाता, वो मजबूरी है। एकाध बार आपके व्रत में कभी दोष लग गया तो वह मजबूरी नहीं, मजबूरी है, वो धर्म नहीं। धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही पालन करना है। तो ऐसा ऐसा करना, जो भी उसके नियमावलियां हैं उसके अनुरूप अपने को होना है, उसको ही हमारे अनुरूप बनाने के विचार हम रखेंगे। तो ये विचार के कारण से कि फिर क्या विचार आएगा, महाराज जरा छूट दे दो, तो धर्म में छूट कैसे? हाँ, लेते समय ही उतना ले लो जितना आपका आपको पालन हो सकता है, परंतु लेने के बाद महाराज आप अपने तरफ से इतना छूट दे दो, हम इतना कर लेते हैं। तो धर्म जहां तक है उतना करना तो कर्तव्य है, लेकिन उसमें से छूट नहीं मिल सकता। महाराज रात्रि भोजन त्याग दिला दो हमको, तो त्याग करो, लेकिन रात को पानी भी नहीं पीना, इसका नाम रात्रि भोजन त्याग है? परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से यदि हम रात्रि भोजन की परिभाषा बनाते हैं, हाँ, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कथन ये है कि पानी जो है, पानी पिला दो, उत्कृष्ट रूप से जो रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप है वो यही है ना, कि रात्रि में कुछ भी नहीं खाना पीना, औषधि तक नहीं लेना, यही उसका स्वरूप है। महाराज हम उत्कृष्ट रात्रि भोजन व्रत लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें छूट दे दो। देखो लेना तो उत्कृष्ट चाहते और उसमें और छूट मांग रहे हैं। क्या छूट मांग रहे हैं? जरा बीमारी आती है तो ये गोली लेनी पड़ती है और उसके साथ पानी, तो औषधि और पानी का छूट दे दो तो ये उत्कृष्ट हो जाएगा क्या? नहीं, आपको उत्कृष्ट लेना नहीं चाहिए। यदि उत्कृष्ट का पालन नहीं हो सकता है तो उत्कृष्ट नहीं लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए आपको? तो जितना निभता है पहला उतना ही करना चाहिए, वो भी धर्म है। रात्रि भोजन त्याग का वह अभ्यास कहलाएगा। रात्रि भोजन त्याग तो वही है जिसको लेने के बाद हम कुछ भी खाते पीते नहीं, वो उत्कृष्ट है, उसका पूरा फल मिलता है। और एक देश पालन करेंगे तो एक देश फल मिलेगा, लेकिन पालन करते समय, व्रत लेते समय उत्कृष्ट ले लो और उत्कृष्टता में थोड़ा छूट भी ले लो साथ में, ऐसा नहीं चलता। चलेगा? पूरा ले लो और दवाई का फिर भी छूट ले लो। ये रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप है क्या ऐसा? नहीं, उत्कृष्ट स्वरूप तो वही है। अब आपको वो नहीं हो पाता है तो इसलिए आप छूट रख करके ले लेते हैं, तो लेते समय ही छूट रख करके लिए हैं तो कोई बात नहीं, वो उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा, वो उत्कृष्ट धर्म नहीं है। तो धर्म हमें कितना सरल रास्ता बताता है। धर्म ये नहीं सिखाता आपको कि तुमको तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं सिखाता। तुमको जितनी शक्ति है उतना पहले कर लो और शक्ति जैसे जैसे आप जुटाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निर्दोष पालन वो भी हो जाएगा जो उत्कृष्ट रूप है। अभ्यास देखो, धर्म तो धर्म है, उसको दो बता दिया, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। श्रावक धर्म में दोनों धर्म है क्या? नहीं, श्रावक धर्म में नाम से तो दोनों धर्म है, श्रावक धर्म में कुछ छूट होती है क्या? आप परिग्रह भी रख सकते हैं, दो बार तीन बार भी खा सकते हैं, इस प्रकार ये छूट हुआ। परंतु मुनि धर्म में छूट नहीं है, ये श्रावक धर्म का छूट है। और इसलिए ये छूट होने से इस प्रकार छूट होने से इस प्रकार छूट होने से किस प्रकार का छूट? हाँ, छूट होने से ये महाव्रत नहीं कहलाता, ये श्रावक धर्म मुनि धर्म का अभ्यास वाला धर्म कहलाता है। अभ्यास वाले धर्म में छूट रहती है, ये कोई आपको नियम नहीं कि एक ही बार खाओ, श्रावक धर्म में छूट है, दो बार खाओ, लेकिन क्या करो, लेकिन कम से कम धर्म की ओर कदम तो बढ़ाओ। तो कदम बढ़ाते 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 एक दिन मुनि धर्म में पहुंच जाओगे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी इच्छा क्या है? मुनि धर्म की ओर बढ़ना। प्रतिमाधारी भी आप बन गए तो किधर बढ़ रहे हैं आप? मुनि धर्म की ओर। इस जन्म में भले ही न बढ़ पाए लेकिन अगले जन्म तक तो बढ़ेंगी ही ना, अगले जन्म तक तो आप बढ़ ही जाएंगे ना, संस्कार आएंगे। तो मुनि व्रत का संस्कार डालने के लिए, मुनि व्रत का संस्कार लेने के लिए, आत्मा पर उनके संस्कारों को मजबूत करने के लिए श्रावक धर्म का विधान हुआ है। ये प्रतिमाएं जितनी भी हैं, ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारा मुनि धर्म है, ये तो मार्ग है, मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग वो कहां से शुरू होता है? मुनि धर्म से होता है, श्रावक धर्म से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। हाँ, वहां चारित्र नहीं है। जहां चारित्र होता है वहां पर पंच पाप रहते नहीं, और जहां पंच पाप में से कुछ पाप या सभी पाप रहते हैं वहां धर्म होता मार्ग होता नहीं है। तो मार्ग किस गुणस्थान से प्रारंभ होता है? छठे गुणस्थान से। हम कहां जा रहे हैं फिर? मार्ग की ओर जा रहे हैं कि डायरेक्ट मोक्ष में जा रहे हैं? हाँ, प्रतिमा को लेकर के हम मार्ग पर लगना चाहते हैं। मार्ग यानी हाईवे, जहां पर सीमेंटेड रोड है, राजमार्ग। राजमार्ग राज राजा का मार्ग, राजा लोग ही चल सकते हैं। महाराज मार्ग है वो, राजमार्ग वो महाराज मार्ग है। उस महाराजों के मार्ग पर चलने के लिए हमने कुछ पाप को त्याग करके पगडंडी पर तो चलने का कम से कम प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे, राजमार्ग में पहुंचेंगे। और राजमार्ग में पहुंच गए तो आपके पंच पाप कुछ भी रहेंगे नहीं। उस दिन तो, जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन तो पंच पाप पूरी तरह से छूट जाएंगी। तो यहां राजमार्ग तक पहुंचने के लिए दो मार्ग, दो, एक चौथा गुणस्थान वाला और एक पंचम गुणस्थान वाला। पंचम गुणस्थान वाला जरा अच्छा मार्ग है, वो बैलगाड़ी रोड है जिसमें स्कूटर भी चल सकती है, फोर व्हीलर भी हो तो भी उसको ले जा सकते हैं, लेकिन पगडंडी हो तो साइकिल चल सकती, साइकिल चल सकती। इस पगडंडी पर, जिस पर साइकिल चल सकती है, उस मार्ग पर कांटे नहीं हैं। और जहां पगडंडी भी नहीं वहां कांटे, न बैलगाड़ी रोड है न पगडंडी है, वहां कांटे। तो किस गुणस्थान का मार्ग है वो? पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान से जो मार्ग निकलते हैं उन गुणस्थानों को पार करने से पहले पहले कई कांटे तो चुभेंगे आपको। तो उन कांटों से मुक्त होकर के चतुर्थ गुणस्थान के पगडंडी पर आने का प्रयत्न सर्वप्रथम करता है। और ये बाइसिकल, साइकिल इस पर चल सकती है। और बैलगाड़ी रोड पर ट्रैक्टर भी चल सकता है, कार गाड़ी भी चल सकती है, भले ही हिलते डुलते जाए लेकिन कार गाड़ी भी जा सकती है, मारुति। तो पंचम गुणस्थान बैलगाड़ी का रोड है, चतुर्थ गुणस्थान पगडंडी का मार्ग है, और तृतीय, द्वितीय और प्रथम, ये तीन गुणस्थान ये जंगल के रोड हैं। ये उस जंगल में भटक गए हैं, भटकते भटकते पगडंडी ढूंढ रहे हैं। ऐसी पगडंडी हमें मिल जाए, या तो ऐसे बैलगाड़ी का रोड मिल जाए जो सीधा कहां पहुंचती? राजमार्ग पर, हाईवे पर, डायरेक्ट हाईवे पर ही पहुंच सकते हैं। लेकिन हाईवे तक जंगल नहीं होता, हाईवे तक जंगल नहीं रहता। और यदि हाईवे पास आ जाए तो वहां कई पगडंडियां दिखाई देंगी आने से पहले ही, कई बैलगाड़ी के रोड भी दिखाई देंगे। तो उस पर हम लग जाते हैं जहां पर बीहड़ जंगल है, कभी उतरना पड़ता है कभी चढ़ना पड़ता है, और पेड़ ही पेड़ हैं और कांटे ही कांटे हैं। उसमें हम दूर से खड़े होकर के देखते हैं, वहां से तो कोई रास्ता नहीं जा रहा है, यहां से तो कोई रास्ता नहीं जा रहा है, जहां वो खड़े हैं वहां कोई रास्ता नहीं, वहां कांटे हैं, पत्थर हैं, गड्ढे हैं, उतार चढ़ाव है। उससे वह निकलकर प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, तृतीय गुणस्थान, इससे निकलकर कहाँ आता है? हाँ, चौथे गुणस्थान यानी पगडंडी पहले मिलती है, और यह पगडंडी कहाँ पहुंच जाती है? बैलगाड़ी रोड पर पहुंच जाती है, और वो बैलगाड़ी का रोड कहाँ पहुंच जाती है? वो राजमार्ग पर, और वो राजमार्ग कहाँ पहुंच जाता है? वो मोक्ष में पहुंच जाता है। देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है, आप चले ही नहीं आज तक। यदि किसी ने नहीं बताया है तो आज हमने बता दिया है। अब चलना, अब चलना, पहले पगडंडी पर आओ, फिर बैलगाड़ी रोड पर आओ, फिर सीधा राजमार्ग पर पहुंच जाओ। इसके लिए दो भाव लगे, एक भाव लगे, या इसी भाव में करना हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है कि आप कितना कर पाएंगे। चलते मरण, मरण का विषय चल रहा था। हाँ, बाल बाल मरण अनंत बार हुआ है। बाल मरण हमने नहीं किया अनादिकाल से, उसको एक बार करना है। बाल पंडित मरण भी एक बार भी नहीं किया, पंडित मरण भी एक बार भी नहीं किया। पंडित मरण तो सपनों में भी नहीं हुआ। तो हमारा इन पांच प्रकार के मरणों में हमारी मंजिल कौन सी? पंडित मरण। देखो, बाल मरण करना अच्छा है, एक तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कौन सा? बाल मरण, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। बाल मरण करने योग्य है, बाल पंडित मरण भी करने योग्य है, और पंडित मरण भी करने योग्य है। ये तीनों मरण मार्ग रूप हैं। एक पगडंडी है, एक बैलगाड़ी वाला है मार्ग, और एक राजमार्ग वाला है। और ये राजमार्ग कहाँ पहुंच जाता है? मोक्ष तक पहुंच जाता है। और जिस दिन आपको मोक्ष मिलना होता है, उस दिन आपको पंडित मरण के बाद ही मोक्ष होता है। मरण के बिना तो मोक्ष भी नहीं मिलता किसी को। क्या मिलता है? जन्म से आज तक किसी को मोक्ष मिला है क्या? जन्म को तो संसार कहा है, जन्म से कोई फायदा नहीं, हानि है। इसलिए जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए। आप किसका दिवस मनाते हैं? ये स्वयं बर्थडे है इसलिए मनाता है। ये बड्डा है कुछ जानता नहीं। जो बर्थडे मनाते हैं वो बर्थडे ही हैं, कुछ भी नहीं जानते, वो बर्थडे में हैं। बड्डे किधर हो यान गोती लोर के इना भाव बड्डे किधर। कौन सा मरण करना है?
पंडित मरण करके मोक्ष जाना ये सबसे अच्छा
है। सबसे अच्छा है, तो करो साहस। क्या करना? पगडंडी पर खड़े हो जाओ। यदि पगडंडी पर खड़े हो तो आ जाओ बैलगाड़ी रोड पर। यदि बैलगाड़ी रोड पर नहीं आना है तो आ जाओ राजमार्ग पर। महाराज, आप बोलने की शक्ति नहीं, आप सोचेंगे। अभी तक जोर से आवाज आ रही थी, अभी तक जोर से आवाज आई, अब दब गई। देखो आवाज जहां मरण के बिना मोक्ष नहीं है, और जन्म हमारे लिए सुखदायी नहीं है। मरण से सुख मिल सकता है, मरण के पश्चात अनंत सुख है, लेकिन जन्म के पश्चात अनंत दुख है। जन्म तो संसार का प्रतीक है। बर्थडे कभी मत मनाओ। क्या ऐसा जन्म बार बार चाहते हो क्या? जन्म ही जन्म, जन्म ही जन्म, जन्म ही जन्म चाहते हो क्या? तो फिर खुश क्यों इस बर्थडे से? जन्म लेने से आपको खुशी हो रही है? नहीं, जन्म लेना खुशी की बात नहीं होती। मरण हमने अगर यथार्थ मरण कर लिया, सच्चा मरण कर लिया, तब खुशी मनाना चाहिए। तो महाराज उसको कैसे मनाए? अभी तो मरे ही नहीं और मरने के पश्चात उसको मना नहीं सकते। हाँ, मरण की तैयारी तैयार करो। मरण की तैयारी शुरू हो जाए और जिस दिन मरण करेंगे ना, उस दिन आप अपराजित कहलाएंगे। नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र है, इसको जपते जपते स्वयं भी अपराजित होंगे। और उस समय स्वागत करो मरण का, मनाओ मरण को, प्रतिक्षण मनाओ। मरने से पहले मरण को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। किस मरण को मनाओ? बाल मरण को करना चाहते हैं तो बाल मरण को मनाओ। पंडित मरण करना चाहते हैं तो पंडित मरण को मनाओ। और कैसे मनाओ? केक काटकर? मरण को मनाने का विधि विधान क्या है? व्रतों से मनाओ। पंच पापों को त्यागो। ये पंच पाप पुनः कर्मबंध के कारण हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पंच पाप हैं। इनके कारण से आत्मा कर्मों को बंद कर रहा है और कर्मों को बंद करता है तो नियम से जन्म भी ले रहा है। ये जन्म मरण क्यों हो रहे हैं? पंच पाप के कारण। यदि जन्म को मनाना है तो पंच पाप करो और मरण को मनाना है तो व्रतों को मनाओ। अपने जीवन में सम्यक्त्व को मनाओ, सम्यक्त्व को भजो, उसका पालन करो। अनुव्रतों को मनाओ, उसका पालन करो। महाव्रतों को मनाओ, उसका पालन करो। प्रतिक्षण प्रतिसेकंद आप यदि व्रतों की आराधना करेंगे तो ये मरण को मनाना हुआ। मरण को ही मनवाने के लिए हमने व्रत लिया है। जब मरण आएगा उसको मनवाना है। आओ ना हम व्रती हैं, आओ ना हम व्रती हैं, आओ ना मनवाना है उसको। हे मरण, हे पंडित मरण, हे बाल पंडित मरण, आओ ना हम व्रति हैं। ये सब कुछ व्रतों का, पंच पापों को त्याग करके, इतना कष्ट सहन करके, सबसे बच करके, जो कुछ भी परिश्रम अभी जीवन पर्यंत जो किया है वो तुम्हारे वजह से किया है। तुम्हारे वजह से ही इन व्रतों को मनाया है। अब तुमको मनाना है, अब तुमको मनाना है। हे पंडित मरण, आ जाओ, स्वागत है। मुझे अपराजित बनाओ। मैं अपराजित बनने के लिए आया हूं। मैं जो जाप करता था मंत्र, वो भी अपराजित था, वो भी तुम्हारे लिए था, तुम्हारी सिद्धि के लिए था। मैंने जो जप भी किया वो मरण के लिए किया। मैंने जो पंच पापों को त्यागा मरण के लिए त्यागा। व्रतों को निर्दोष पालन किया मरण के लिए किया। तप भी किया मरण के लिए किया। ये सारे परिश्रम, धार्मिक विधि अनुष्ठान, देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप दान, किस लिए हैं ये सब? किस लिए? मरण को मनवाने के लिए। वो मानता नहीं, मनवाने की ये तरीका है। क्या तरीका? व्रतों को पालन करने से ही वो मानेगा हमारी बात को, और जो व्रतों का पालन नहीं करते हैं वो क्या मरण को मनवाएंगे। महाराज हमारी संलग्न होनी चाहिए, वो आसान थोड़ी है, ऐसी संलग्न होनी चाहिए। मरण करते समय नमोकार मंत्र सुना दिया, जैसे जीवंधर कुमार ने किसी एक प्राणी को, दुखी प्राणी को कानों में नमोकार मंत्र सुना दिया और मन करवाए, संलग्न मरण हुआ क्या? वो उसने क्या, कौन सा व्रत पालन किया था? उस प्राणी ने कौन से मरण को मनवाने हेतु कौन सी विधि विधान को अपनाया था, कौन से व्रत पालन किया था? अगर वह कुत्ता 12 अनुव्रतों का पालन कर लेता तो उसकी संलग्न होती जीवंधर कुमार के गोदी में, संलग्न होती। संलग्न किसको है ये मरण? बाल पंडित मरण, पंडित मरण, ये किसको है? बाल पंडित मरण आई पांचवे गुणस्थान का, पंडित मरण छठे सप्तम गुणस्थान का किसको है? जो व्रती है, जो महाव्रति और अनुव्रति है उनके लिए। व्रतों के बिना संलग्न होती है क्या? और संलग्न व्रतों के बिना ही लेने की इच्छा करना चाहिए क्या? जिंदगी भर तो हमने रात्रि भोजन भी त्याग नहीं किया और लास्ट में संलग्न। महाराज घर में दादाजी बस जाने वाले हैं और चलो संलग्न मरण जरा करवाओ। मंदिर नहीं गए, रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, प्रवचन नहीं सुने, स्वाध्याय नहीं किया, मुनियों को दान भी नहीं दिया, सत्पात्र दान भी नहीं दिया, कोई षटकर्म नहीं किया, और वो मरण कर रहे हैं और घर वाले बुलाने आए हमें किस उद्देश्य से? इसकी संलग्न कराओ, करो, कराओ महाराज, आओ। आप तो संलग्न करेंगे ही, आप जैसी संलग्न हमारे दादाजी का भी हो जाए। संलग्न इतना सस्ता है क्या? वो पत्थर मिट्टी के समान नहीं है, वो तो हीरा है। हीरे को खरीदने के लिए बहुत चाहिए पड़ता, पैसा चाहिए। संलग्न होने के बाद 8 भाव बचते। संलग्न होना चाहिए, कौन से संलग्न? या तो पंचम गुणस्थान वाला संलग्न हो, या तो छठे गुणस्थान वाला संलग्न। बाल पंडित मरण करोगे तो संलग्न की जरूरत नहीं। चौथे गुणस्थान वालों को कोई भी संलग्न का विधान आगम में नहीं कहा है, सम्यक दृष्टि भले ही है, संलग्न जरूरी नहीं है। संलग्न आवश्यक उनको जिन्होंने 12 अनुव्रत पालन किया है या महाव्रत पालन किया है, उनको संलग्न है। समझ में आ गया ना? विशेष बात ध्यान में रखो, नहीं तो मरण के टाइम में संलग्न 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 कर करके, और देने वाले भी बहुत हैं यहाँ। हाँ, आपको दे देंगे, फ्री में दे देंगे, उनके पास फ्री मिलता है संलग्न संलग्न व्रत। ऐसे इतना सस्ता नहीं संलग्न, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मा के मोह को गलाना पड़ेगा, आत्मा के पंच भावों को, पंच पापों के भावों को विसर्जित करना पड़ेगा। ये पंच पाप कब से हो रहे हैं? अनादिकाल से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पंच पाप कब से करते चले आ रहे हैं हम? अनादिकाल से। एक बार तो छोड़ना पड़ेगा, जिसने छोड़ दिया उसके लिए संलग्न भी अनिवार्य है। मंदिर बांधते हैं तो मंदिर बांधते हैं, मंदिर पूरा हो गया, शिखर भी पूरा हो गया, अब क्या रहा? मंदिर बांधा, शिखर बांधा, सब तैयार हो गया। अब क्या रहा? कलश। कलश का अर्थ संलेखना। मंदिर बांधकर शिखर बांधना, बांधने का अर्थ ये व्रत, व्रतों का पालन। मंदिर ही नहीं बांधा जिसने, और कलश बनाया और चढ़ाने के लिए जा रहा है, किस पर चढ़ाओगे? मंदिर ही नहीं है और कलश बना करके, स्वर्णमय कलश, बड़ा कलश स्वर्ण का बना करके लाए, किस पर रखोगे उसको? आकाश में रखोगे? गिर जाएगा। जिसने जिंदगी भर मंदिर को मजबूत बनाया, जिस मंदिर की नींव मजबूत है, जिस मंदिर में भगवान विराजित हैं, उस मंदिर के लिए संलेखना का कलश अनिवार्य है। जो व्रती हैं वे कंपलसरी संलेखना ले, ये ठीक है, ये ठीक है। और जिसने व्रतों का पालन ही नहीं किया उसके लिए कोई विधान नहीं। महाराज अंत समय में छोड़ देंगे, अंत समय में मुनि बन जाएंगे, घर में गादी पर लेटे रहते हैं ना, जब मरण आएगा नीचे उतर जाएंगे, पाटे पर लेट जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, सब वस्त्र उतार देंगे, महावर्ती मुनि जैसे बन जाएंगे। और हमने पिंची परिवर्तन के टाइम में जो पिंची रखा है उसको ले लेंगे, और इधर एक कमंडोल भी रख देंगे, संलेखना ले ले। तो ऐसी संलेखना होती एकाएकी, अब पता चला ये क्या हो जाएगा, अब पता चल गया ये क्या हो जाएगा। हाँ नया नाम, नाटक से लिखना, एक नया नाम आ गया, लेकिन शास्त्रों में नहीं आया। देखो ये शास्त्रों में नहीं, ये नाम नहीं आया, कोल्हापुर में आया नया नाम, रुईकर कॉलोनी में एक नए नाम ने जन्म ले लिया, एक नाटक से लिखना भी होता है। देखो हमको क्या क्या करना है, हमें अपराजित बनना है। अपराजित बनने के लिए सफलता दिलाने के यदि कोई साधन है तो व्रत हैं। व्रत ही हमें सफल बनाएंगे, किसमें? संलेखना में। तो व्रत ही हमारे लिए संलेखना को दिलाते हैं, व्रत ही दिलाते हैं। और जिसके पास व्रत नहीं है, संलेखना मांगने का कोई उसको अधिकार नहीं है। सम्यक दर्शन तो है महाराज, सम्यक दर्शन रखो आप, वृत्ति हो क्या चौथे गुण स्थान में रहे अभी तक, फिर संलेखना क्यों ले रहे? लेना व्यर्थ है। क्या करोगे लेकर के? कौन सा मरण करोगे? चौथे गुण स्थान में ही मरोगे ना, तो संलेखना लेओगे तो भी चौथा गुण स्थान में मरोगे, नहीं लेओगे तो भी चौथे गुण स्थान में मरण करोगे। संलेखना से क्या पंडित मरण हो जाएगा चौथे गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में पंडित मरण भी नहीं है, बाल पंडित मरण भी नहीं है। पंचम गुण स्थान में बाल पंडित मरण है, और छठे गुण स्थान में पंडित मरण है, और चौदहवें गुण स्थान में पंडित पंडित मरण है। हाँ? क्या बोले? निर्वाण, उसी को निर्वाण बोलते। निर्वाण यानी मोक्ष। पंडित पंडित मरण के बाद आत्मा सिद्ध भगवान बन जाती है। तो देखो रास्ता तो हमने बता दिया, अपराजित होने का रास्ता बताया, अपराजित मंत्र का विषय है। अपराजित ये भी हमको बना सकता है, परंतु मंत्र ही केवल आपको अपराजित नहीं बनाता, मृत्यु को जीतने के लिए व्रत चाहिए, मृत्यु को जीतने के लिए संलेखना चाहिए। संलेखना अंतिम व्रत, जीवन का अंत्य का व्रत कहलाता है, शिखर व्रत है वो, अंतिम समय में लेने का व्रत है वो, पहले से लिया नहीं जाता। जीवन भर व्रतों का पालन किया जाता है, लास्ट में जाकर के जब हम जाने वाले होते हैं तो उस समय यम संलेखना, उसके दो भेद बताए, नियम संलेखना, यम संलेखना। नियम संलेखना में तो थोड़ा 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 अभ्यास करते 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 चले जाते हैं, और यम संलेखना में एक साथ शरीर के मोह को त्याग कर, आहार पानी जल आदि को त्याग कर, बाहर में आहार जल शरीर मोह आदि का त्याग किया जाता है, ये काय संलेखना है। लेकिन यह अंतरंग बहिरंग रूप से दोनों प्रकार से संपन्न होना चाहिए संलेखना। अंतरंग में कषाय जानी चाहिए, कौन सी कषाय जानी चाहिए, यदि आप बाल पंडित मरण कर रहे हैं तो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय मरण टाइम तक न आए, समलो अनुवृतों को, प्रत्याख्यान का ही उदय रहे और ये कषाय भी मंद रहे, शुक्ल लेशा रहे मरण के काल में, ये संलेखना। क्या क्या रहे ध्यान में रखना थोड़ा, पंचम गुण स्थान में अगर मरण करना है तो ही संलेखना है, चौथे में तो है ही नहीं। तो पंचम गुण स्थान में अगर मरण कर रहे हैं तो कषाय संलेखना क्या चीज है, तो वो कषाय उत्पन्न ना हो जो व्रतों का घात करते, अनुव्रतों का, इससे संभले रहो। तो अनुव्रतों का घात किस कषाय से होता है, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय से। तो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को क्षीण करना, ये कषाय संलेखना है पंचम गुण स्थान में, ये कषाय संलेखना है, इसको क्षीण करो। अनंत अनुबंधी को क्षीण करके आपने सम्यक्तु का लाभ ले लिया था, सम्यक्तु धर्म को पा लिया था। अब आपको क्या करना है, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय जो हमारे अनुव्रतों का घातक है उसको होने नहीं देना, उदय में आने नहीं देना। वो उदय में आ गया तो जो आपने त्याग किया है, त्यक्त परिग्रहों के प्रति रागादि भाव होना शुरू हो जाएगा, मैंने ऐसा ऐसी दीक्षा क्यों ली, ये तो बहुत कष्ट है, क्या हो रहा है, प्यास लग रही है, ये अनुव्रत लेना नहीं चाहिए था, संलेखना साधना तो बहुत कठिन है, प्यास लगी तो एक बार खाने का व्रत है, दो बार खाने की इच्छा हो गई, तो कौन सी कषाय उदय में आई, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय उदय में आ गई, इच्छा हो गई तो हो गया। ऐसा नहीं कि पीने पर ही सब कुछ होता है, भावों से भी पाप होता है, भावों से भी बचना, स्वप्न में भी नहीं आना। एक ही बार खाने का व्रत लिया है तो एक ही बार खाना, अंतिम समय तक एक ही बार खाना, पर दो बार की इच्छा हो गई तो अनुव्रत गया, और जो परिग्रह आदि हैं उसमें रागादि भाव होने लग गए तो होता है ऐसा। जब कष्ट का समय आता है, संकट का समय आता है, उस समय हमने दीक्षा क्यों ली, नहीं लेना चाहिए था, ये तो बहुत कष्ट है संलेखना। तो संलेखना लेने के बाद ये परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं कि तो बहुत बड़ा कठिन है, कठिन है तो फिर क्या चाहते हो, मैं नीचे रहता तो बहुत अच्छा था, कहाँ बाल पंडित मरण के साथ रहता और उसके साथ मरण करता तो बहुत अच्छा था, लेकिन आकर के यहाँ अटक गया हूँ, क्या करूँ, अब लोगों के सामने तो बोल नहीं सकता और लोग भी कह रहे हैं कि तुमको संलेखना दी गई है और छोड़ना नहीं और उनकी जोर जबरदस्ती वो भी कम थोड़ी, वो तो आप संलेखना लेने से पहले ही दे चुके हैं और मरण के वक्त आपको सुनाते हैं, वो तुमको तो दिया गया है, तुम छोड़ नहीं सकते। ऐसा होता है, अज्ञानी जीवों के बीच में संलेखना नहीं ली जाती, मुनि होकर के क्या श्रावकों से संलग्ना ले लें हम? क्या मुनि होकर श्रावक हमारे लिए संलग्ना दे दें? क्या मुनि को ये उपदेश श्रावक दे सकता है कि महाराज आपका संलग्ना का टाइम आ गया और संलग्ना ले लो? हाँ, देखो आपको पंडित मरण करना है तो उपयोगी है, आप प्रतिमाधारी बनकर आ जाएं इसलिए बनाते हैं। जो प्रतिमाधारी नहीं है उनके लिए नहीं, वो मंदिर किसके लिए? संलग्ना मंदिर उन्हीं के लिए जो व्रति, यहां पर व्रतियों के लिए प्रवेश है, अविरत समय दृष्टियों के लिए नहीं, व्रतियों के लिए प्रवेश। और यदि अविरत समय दृष्टि जाकर के मुझे महाराज संलग्ना दे दो, आप नहीं देंगे तो हम यहां से नहीं जाएंगे, तो क्या बिगड़ता है? एक मंदिर है उसमें आप मरण कर रहे हैं, महाराज तो आपको संलग्ना नहीं दे सकते, और आप सम्यक्त्व के साथ ही सम्यक्त्व को संभालते हुए भी मरण करेंगे और अंत समय में मोह छोड़ेंगे। किसका? शरीर का मोह छोड़ेंगे, आहार पदार्थ का मोह छोड़ेंगे, और इस प्रकार से भी यदि मरण करेंगे तो क्या हानि है? मरण करो, कौन मना करता है, लेकिन चौथे गुणस्थान का ही मरण है वो, क्योंकि जिंदगी भर आपने अनुव्रतों का पालन नहीं किया है, तो अंत में मोह छोड़ करके मरण करने वाला भी बाल मरण ही करता है, वो संलग्ना मरण नहीं है। उसको संलग्ना मरण कैसे कहेंगे? अंत में थोड़ा बहुत मोह भाव छोड़ दिया इसलिए नहीं, 12 अनुव्रतों का पालन जिन्होंने जिंदगी भर किया है, कुछ समय तक कुछ साल तक भी किया है तो चलेगा, संकल्प के साथ अनुव्रतों का पालन होता है, एंड टाइम में एकाएक ही मोह छोड़ता हूं, ये संलग्ना नहीं है। इस संलग्ना को उन्होंने नाम दे दिया लेकिन ये गलत भी नहीं है ऐसा करना, नाटक संलग्ना भी करना गलत नहीं है, कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर मोह परिणामों को हटाकर निर्मोह परिणामों को संस्कारित करके मरण करना, क्या ये व्यर्थ है? व्यर्थ भी नहीं है, हम सर्वथा व्यर्थ नहीं कह सकते, लेकिन उसको संलग्ना कहते हो, संलग्ना मानते हो तो ये गलत है, ये गलत है। उसको संलग्ना नहीं मानना, उसको पंडित कौन सा बाल मरण ही मानना, बाल मरण को संलग्ना मरण कहीं भी आगम में लिखा नहीं है। संलग्ना मरण को दो मरणों को संलग्ना मरण कहा है, एक बाल पंडित मरण और पंडित मरण। भगवती आराधना में पंडित मरण का व्याख्यान बहुत विस्तार से किया और उस मरण के तीन भेद बताए, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण, तीन प्रकार के मरण है पंडित मरण। और पंडित मरण भक्त प्रत्याख्यान के साथ हो सकता है, तो इंगिनी और प्रायोपगमन से ये छोटा है, इसकी विधि सरल है। जिसको शक्ति नहीं है, जो उत्तम सहनन वाला नहीं है और हीन सहनन में से एक सहनन वाला है, चौथा पांचवा या छठा, इन लोगों के लिए भक्त प्रत्याख्यान मरण करने को कहा। और इंगिनी मरण जो होता है, वो इंगिनी मरण ऊपर के तीन सहनन वालों को है, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण और इंगिनी मरण उत्तम सहनन वालों को है। पंचम काल में कितने सहनन है? तीन है, तो आज कौन सा मरण हो सकता है? भक्त प्रत्याख्यान मरण हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये भक्त प्रत्याख्यान मरण का इतना डिटेल वर्णन किया है भगवती आराधना में, शिवकोटि आचार्य ने लिखा है, उसके बड़े बड़े दो भाग हैं जो सोलापुर से छपे, जीवराज ग्रंथमाला से, उन दोनों का अध्ययन करना चाहिए एक बार। भक्त प्रत्याख्यान का जहां वर्णन उन्होंने किया, आज मुनियों को भक्त प्रत्याख्यान मरण ही है, तो फिर प्रश्न उठाया कि बाल पंडित मरण वालों को कौन सी विधि है, तो कहा भक्त प्रत्याख्यान की विधि ही बाल पंडित मरण को साधने वालों को भी वही विधि है। यानी भक्त प्रत्याख्यान मरण को भी संलेखना कहते हैं, जो मुनि के लिए भी है और जो श्रावक के लिए भी है। श्रावक कौन? तो कम से कम दो प्रतिमा, हाँ एक नहीं, कम से कम दो प्रतिमा पालन करने वाला 12 अनुवृतों का पालन करता है। और पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। दर्शन प्रतिमा का अर्थ कोई कुछ लोग ये समझते हैं, महाराज हमको दर्शन प्रतिमा दे दो। तुमने दर्शन प्रतिमा का क्या अर्थ बोलो, तो कहते हैं रोज दर्शन करूंगा मंदिर जाकर ये दर्शन प्रतिमा, रोज मंदिर जाने का नियम को दर्शन प्रतिमा बोलते हैं, गलत है। दर्शन प्रतिमा का मतलब देव दर्शन नहीं। हाँ ध्यान रखना, कई लोगों को यही मालूम है, देव दर्शन का व्रत अलग बात है और दर्शन प्रतिमा अलग बात है। दर्शन प्रतिमा का मतलब होता है कि वे 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को पालन करें और 8 मूल गुणों का साथ में पालन करें। 8 मूल गुण कैसे? 5 स्थूल अनुव्रत और 3 मकार त्याग, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। पंच अनुवृत्त के साथ इन 3 मकारों का जो त्याग करता है, साथ में 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करता है, उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। और ये दर्शन प्रतिमा का व्रतधारी अनुवृतों का संकल्पी नहीं होता, अनुवृतों का अभ्यास करने वाला भी होता है, इसलिए इसको प्रतिमा की कोटि में रखा है। पाक्षिक श्रावक जो चतुर्थ गुण स्थान वाला है, उनके लिए अनुवृतों के अभ्यास का कोई नियम नहीं। उनके लिए तो 25 दोष से बचो और 8 मूल गुणों का पालन करो, इतना ही है, अभ्यास का कोई नियम नहीं। तो ये पाक्षिक श्रावक, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती पाक्षिक श्रावक, किंतु पंचम गुणस्थान के लायक बनना चाहते हैं तो 12 अनुव्रतों का अभ्यास करना भी कंपल्सरी, जिस व्रत के साथ है उसका नाम दर्शन प्रतिमा। ये दर्शन प्रतिमा है, ये एक प्रतिमा को आप पालन कर लेते हैं तो शुद्ध भोजन शुरू हो गया। जैसे मुनियों को शुद्ध भोजन आहार देते हैं ना, उस टाइप का भोजन नित्य करेगा वो श्रावक, नियम हो गया। पर संकल्प नहीं है, अभी भी संकल्प नहीं। अनुवृतों को, 12 अनुवृतों को संकल्प पूर्वक धारण कर लेता है तो फिर शुद्ध भोजन वहां भी है और यहां भी है। ये अभ्यास के रूप में है और वो संकल्प के रूप में है। तो इस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। क्या बोल रहे थे हम? प्रतिमाधारी। हाँ प्रतिमाधारी। दर्शन प्रतिमा का मतलब देव दर्शन नहीं। देव दर्शन यानी रोज मंदिर जाना और भगवान का ही दर्शन करना, ये व्रत अलग है। ये किसके लिए? ये तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए है, परंतु यहाँ सम्यक्त्व की उत्पत्ति की रक्षा करना है और अनुवृतों का पालन करके दूसरी प्रतिमा की ओर बढ़ना है। ऐसा श्रावक प्रथम प्रतिमा का धारी होता है, इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है, दर्शन देव दर्शन और दर्शन प्रतिमा। कौन सा श्रेष्ठ है इसमें? दर्शन प्रतिमा श्रेष्ठ है। और दर्शन प्रतिमाधारी देव दर्शन करता है कि नहीं? वो तो स्वयं करता ही है और उसको फल भी मिल गया है। देव दर्शन का फल सम्यक दर्शन है, वो प्राप्त हो चुका है। जिन बिंब दर्शन करने से किसकी प्राप्ति होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो तो प्राप्त हो चुका है। अब क्या करना? प्रतिमा का दर्शन करते करते हमने सम्यक दर्शन पा लिया, लेकिन प्रतिमा के गुणों का चिंतन करेंगे, प्रतिमा के भीतर रहने वाले वीतराग गुणों का, संयम गुण का चिंतन करेंगे, तो हम उस चिंतन के माध्यम से अब चारित्र की ओर बढ़ेंगे, प्रतिमा धारण की ओर बढ़ेंगे। तो पहली प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक भगवान के सामने खड़े होकर के बोलता है, भगवान मुझे दर्शन प्रतिमा लेने की भावना जागृत हो गई है और मैं चाहता हूं कि दर्शन प्रतिमा में मैं ये सभी जो 12 अनुवर्तों को पालन करने के लिए मैं जीवन में जो खान पान आदि में शुद्धता रखा जाता है अनुवर्तधारी को, वैसे ही शुद्धता को मैं रखूंगा। इस प्रकार वह अनुवर्तों को लिए बिना शुद्ध भोजन आदि करने का संस्कार प्रारंभ कर देता है, संस्कार शुरू हो जाता है। और ऐसा करते करते जब वह संस्कारित होता है, परफेक्ट हो जाता है, तो उस समय वह संकल्प ले लेता है, फिर दूसरी प्रतिमा ले लेता है। 5 अनुवृत्त, 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त, इनको संकल्प के रूप में ले लेता है। और फिर इस संकल्प के साथ देखो 12 अनुवृत्त तो पालन करेगा, और उन 12 अनुवृत्तों में संलग्न व्रत है क्या? नहीं। संलग्न व्रत किस उसमें लिया? शिक्षा व्रत में लिया है, शिक्षा व्रत। 5 गुणव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से 12 हो गए, 5, 3 और 4, ये 12 हो गए। इन 12 व्रतों को पालन करने वाला नियम से देखो, 12 में से एक छोड़ो संलग्ना, वो अंत टाइम में है, उससे पहले कितने व्रतों का पालन करता है? 11 व्रतों का पालन करता है, या यूं कहें 11 प्रतिमाओं का भी पालन करता है। दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा से 11 व्रतों का पालन, अनुव्रतों का पालन करता है, और प्रतिमाओं की अपेक्षा से 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, और अंत में संलग्ना को साध लेता है। इस संलग्ना को दो तरह से साधना चाहिए, कषाय संलग्ना और काय संलग्ना। काय समझ ले, काय संलग्ना, काय संलग्ना, कषाय संलग्ना। काय यानी क्या? शरीर, शरीर को कृश करना, शरीर का मोह त्यागना, शरीर के संबंध में जो कुछ आहार पानी वगैरह देते थे उस संबंधी, आहार संबंधी मोह त्याग, शरीर संबंधी मोह त्याग करते करते क्षीण कर लिया, शरीर को भी क्षीण करना, और अंतरंग में परिणामों को ठीक रखना, उज्जवल रखना, कषाय को और जाने नहीं देना। तो आपके लिए कषाय कौन सी कषाय हानिकारक है? पंचम गुणस्थान में अप्रत्या के अनावरणी, उसको आने नहीं देना, अंत समय तक आने नहीं देना। क्यों? बाल पंडित मरण को बिगाड़ने वाला वही है। हम कहां मरना चाहते हैं? पंचम गुणस्थान में। और फिर डिगाने वाली को कषाय कौन सी है? अब हमारे अनुवृतों को डिगाने वाली कषाय अप्रत्या के अनावरणी, तो उसको आने नहीं देना, ये कषाय संलग्ना है। और वर्तमान उदित कषाय प्रत्याख्याना वर्णी कषाय, उसको कैसे करना? उसको मंद करना। तो कषाय ये मंद रहेगी तो लेशा शुभ रहेगी, शुक्ल लेशा रहेगी, शुक्ल लेशा के साथ पंचम गुणस्थान में मरण करना, शुक्ल लेशा के साथ पंचम गुणस्थान में जो मरण करना होता है वह मरण संलग्ना मरण। अंतरंग में कषाय कृश हो गए, वर्तमान कषाय मंद हो गया, शुक्ल लेशा के परिणाम रह गए और हम अपराजित हो गए। मृत्युंजयी मंत्र, मृत्युंजयी हो गए। किस मरण को जीत लिया? हमने बाल बाल मरण को भी जीत लिया और बाल मरण को भी जीत लिया, बाल पंडित मरण कर लिया, दो पर हमारा विजय हो गया। और इस पर भी विजय करना चाहते हैं तो आगे बढ़ो, महावृत्ति बनो, मुनि बनो। तो तीन मरण पर विजय साध लिया, और इस पर भी विजय प्राप्त करना चाहे तो और आगे बढ़ो, चौदह गुणस्थान में जाओ, वहां मरो। तो हमारे चार मरण पर विजय प्राप्त कर लिया, चार मरण पर, और उस मरण पर जब हम मरेंगे तो उस मरण पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम जब मरण को जीतते हैं ना, जीतते समय हम व्रती रहते, हम सम्यक दृष्टि रहते हैं, व्रती रहते हैं। बाल मरण वाला बाल बाल मरण को जीतता है, बाल पंडित मरण वाला बाल मरण को और पंडित पंडित मरण को जीतता है, बाल बाल मरण को जीतता है, और पंडित मरण वाला बाल पंडित मरण को, बाल मरण को और बाल बाल मरण को जीत लेता है, और चौदह गुणस्थान वाले पंडित पंडित मरण वाले चार मरण को जीतते हैं, और चार मरण को जिसने जीत लिया वो अंतिम मरण मोक्ष को प्राप्त करा देता है। हो गया जंप संसार से, उस पार जंप हो गया, अब लौट करके कभी भी आप आएंगे नहीं। कहां जाएंगे? यहां से जाएंगे सीधा, एक समय में जाएंगे, धीरे धीरे नहीं जाते, हम धीरे धीरे बता रहे थे। एक समय में जाते, इतनी स्पीड कि आपकी गाड़ी होकर धम वहां टकरा गई, लेकिन चोट नहीं आएगी। एक समय में जाने के बाद भी, इतनी स्पीड से जाने के बाद भी आत्मा को जरा सी भी चोट नहीं आएगी। गाड़ी जोर से भागती रहती है और ब्रेक नहीं लगा तो किसी दीवार से टकरा जाती है या पेड़ से टकरा जाती है, तो गाड़ी चकनाचूर होती है, लेकिन यहां चकनाचूर होने का कोई सवाल नहीं। एक समय में भी जा रहे हैं, इतनी स्पीड से भी जा रहे हैं, तो भी आत्मा को जरा भी दुख नहीं होगा। आप सोचते होंगे कि अंतिम जो वात वलय है ना, तनवात वलय, वहां के वहां से आगे तो धर्म द्रव्य है ही नहीं, और अधर्म द्रव्य रुकने के लिए सहायक है, और अधर्म द्रव्य आगे नहीं होने से वहां रुकना पड़ता है। अधर्म द्रव्य रुकने के लिए सहायक और धर्म द्रव्य जाने के लिए सहायक, तो धर्म द्रव्य जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि वह स्वयं वहां तक है, पटरी जहां तक बिछी है वहीं तक रेलगाड़ी जाती है ना, पटरी जहां तक बिछी है वहीं तक गाड़ी जाती है ना, तो धर्म द्रव्य की पटरी कहां तक है? तनवात वलय के अंतिम सीमा तक है। वात वलय तीनों लोगों को घेरा हुआ, वात वलय वहां तक धर्म द्रव्य, और अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य भी वहीं तक है। आप जब आप सिद्ध परमेष्ठी के रूप में आपकी आत्मा जब रुकती है तब धर्म द्रव्य कारण है वहां, जब गमन समाप्त हो गया तो उसको धर्म द्रव्य कारण है, यहां से वहां तक गए धर्म द्रव्य कारण है, तो उस छोर तक गए ये धर्म द्रव्य कारण है, और वहां रुक गए ये अधर्म द्रव्य कारण है, और वहां ठहर गए ये आकाश द्रव्य कारण है, और जो जा रहा है वो जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य, और वहीं वहीं पर अनंत अनंत काल तक रहेंगे, ये काल द्रव्य कारण है। कितने द्रव्य हैं? छह द्रव्य, छो द्रव्य आ गए ना, वहां पर भी छो द्रव्य काम में आते हैं। यहां से सिद्ध बनने के बाद, सिद्ध तो यहीं बन गए हम, जिस समय बाल बाल मरण किया मनुष्यायु समाप्त हो गई, मनुष्यायु समाप्त होते ही सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई, सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई, अपन चले गए तनवात वलय के, वहां रुक गए, तो यहां से वहां तक गए इसमें धर्म द्रव्य कारण, वहां जाकर के रुक गए इसमें अधर्म द्रव्य कारण, वहीं तक अनंत काल तक हम रहेंगे इसमें आकाश द्रव्य कारण, अनंत काल तक रहेंगे ये काल द्रव्य कारण, और फिर स्वयं तो एक जीव द्रव्य है ही, और फिर पुद्गल द्रव्य किस काम में आ रहा है? पुद्गल द्रव्य किसी काम में अब नहीं आ रहा है। सिद्ध परमेष्ठियों को पुद्गल द्रव्य न उपकार करता है न अपकार करता है, शुद्धात्मा भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। इस प्रकार उन दोनों में भेद भिन्नता है। हम परतंत्र क्यों थे, संसारी क्यों थे, पुद्गल के वजह से, शरीर था, कर्म थे, इसलिए हम परतंत्र थे। ये परतंत्र दशा संसार दशा थी। अब दोनों अलग हो गए ना, पुद्गल अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया। अब उपकार अपकार ये कर सकेगा क्या सिद्ध अवस्था में? तो अनंत काल तक यूं आत्मा सुखी, अनंत सुखी रहेगा, और जहां पर वो गया है उनके आसपास में कितने सिद्ध परमिष्टि बैठे हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि बैठे हैं, 45 लाख योजन गोल की परिधि में अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं। और वहां पर जो सिद्ध हमसे पहले गए थे, हम उन्हीं के अंदर जाकर के विलीन हो गए। आपको मोक्ष मिल गया क्या? हमको तो ऐसा लगा कि आपको मोक्ष मिल गया। तो ऐसे मरण को करना ही मृत्युंजय मंत्र है, ये अपराजित मंत्र है। मंत्र मय हो जाते हैं किस मरण के टाइम? नमोकार मंत्र मय हो जाते हैं संलेखना के टाइम। स्वयं आत्मा साधु परमेष्टि है, और इस साधु परमेष्टि के नाम से नमोकार मंत्र बना है, और इस नाम वाले मंत्र को अपराजित कहा है। अपराजित क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इस साधु परमेष्टि ने 3 मरण को जीत लिया, इसलिए अपराजित है। 3 मरणों को जीत ले इसलिए अपराजित है। और ऐसे अपराजित होने के कारण साधु परमेष्टि वाला जो नमोकार मंत्र है, ये अपराजित मंत्र ऐसा नाम पड़ा है। ये अनादि निधन नाम है, पहले भी अपराजित था, आज भी अपराजित है, और आगे भी अपराजित ही रहेगा। इस नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति है, इस शक्ति को हमें विश्वास करना चाहिए। नमोकार मंत्र पर जिसका विश्वास है वो सम्यक दृष्टि जीव है, और उस पर जिसको विश्वास नहीं है वो सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं है, क्योंकि देव भी उसमें है, गुरु भी उसमें है, और देव शास्त्र उसमें नहीं है। लेकिन शास्त्र कहां से निकली है? देव से। उस शास्त्र को किसने झेला है? गुरु ने। और किसको पहुंचाया है? श्रावकों तक, संसारी भग जीव कल्याण जो चाहते उन तक पहुंचाया, गुरु ने पहुंचाया है। अगर भगवान के पास गुरु ना होते तो शास्त्र हम तक नहीं आ सकता था, सब वहीं पर बह करके चला जाता। तो देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों नमोकार मंत्र में हैं। नमोकार मंत्र में अन्य कोई भी देव नहीं, वस्त्रधारी आभूषणधारी कोई भी देव, यानी देवगति का देव, जिनको चार ही गुणस्थान होते हैं, तो वो नमोकार मंत्र में कैसे आ सकते? नमोकार मंत्र में तो छठे गुणस्थान से रहते हैं, छठे गुणस्थान के ऊपर ही जीव, ऊपर के जितने जीव हैं 14 गुणस्थान तक के, वो नमोकार मंत्र में रहते हैं, और एक तो गुणस्थानातीत है, वो नमोकार मंत्र में है, शुद्ध परमिष्टि। इस प्रकार हमें ये चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से यह अपराजित मंत्र है। ये अपराजित मंत्र के बारे में बहुत डिटेल सुना दिया, अब अपराजित हो जाओ। बस इसको सुन करके जो अपराजित होगा हमारा प्रवचन सार्थक हो जाएगा। जिनवानी माता की जय। निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीशन वाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांध रहे। अब ना हम विषयांध रहे।